जाना चाहते हो। तो चैप्टर 8 का ब्रेकडाउन इस तरह से होता है, इसमें कुछ 5 या 6 डिविजन है चैप्टर 8 में। पहला है 1 से 4, इसमें कृष्णा और अर्जुन के क्वेश्चन आंसर है। फिर 5 से 8 सेकंड, अंतकाल में कृष्ण का स्मरण, उसके विषय में है। फिर 9 से 13 ध्यान के माध्यम से कृष्ण का चिंतन। फिर 3 श्लोक है 14 से 16 भक्ति भक्ति के माध्यम से कृष्ण का चिंतन। और 17 से 22 अंत में भौतिक और आध्यात्मिक संसार, भौतिक और आध्यात्मिक विश्व की तुलना। विश्व का कंपेरिजन, तुलना है ना, एकदम आसान चैप्टर है। 8वां चैप्टर तो कुछ है ही नहीं, एक तो क्वेश्चन आंसर है शुरुआत में, और फिर भगवान अंतकाल का बता देते हैं कि मेरा चिंतन करने वाला, वो पूरा प्रिंसिपल बता दे, फिर ध्यान के माध्यम से चिंतन वाला, भक्ति के माध्यम से चिंतन वाला, ये दोनों को बता दिया, और अंत में दो धाम का तुलना, दोनों का बता दिया तुलना कि आध्यात्मिक और भौतिक में क्या अंतर है, उसमें आध्यात्मिक श्रेष्ठ है। चैप्टर 8 फिनिश। इट्स सो सिंपल। सो वी कैन टेक स्टार्ट टेकिंग, 5 मिनट अभी भी है, वी कैन टेक 2 क्वेश्चन अर्जुन के ले सकते हैं हम। तो क्वेश्चन अर्जुन का प्रश्न पूछिए।
अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए।
हाँ, यहाँ पर सभी में अधि 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 लगा हुआ है, सब जगह अधि देव अधि यज्ञ, मीन्स उसका मूल क्या है, वास्तव में ओरिजिनली कौन है, उत्तम। ये अर्जुन की इंक्वायरी है। जस्ट रीड दैट अगेन, इंक्वायरी, ये ब्रह्मा को कितने क्वेश्चन है इसके अंदर,
5
है एग्जैक्ट।
आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या
है। हाँ, तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि जो क्वेश्चन है ना, तो उसमें ज्यादातर सब क्या है तो सब कॉमन है, आगे का वर्ड ही है, तो वर्ड आप एक बार अपने नोट में लिख लो। तो ऐसे तो प्रभुपाद एक लेक्चर में बताया कि आत्मा शब्द का बहुत सारे अर्थ होते हैं, इसलिए बताओ भाई एग्जैक्टली आत्मा क्या है, एग्जैक्टली क्या है आत्मा। आत्मा शब्द के बहुत सारे अर्थ है संस्कृत में, हर एक शब्द के, जैसे प्रभुपाद एक लेक्चर में बताया आत्मा मीन्स सोल, सो कृष्ण इज अ पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, अगर वो उत्तम पुरुष है तो फिर मध्यम पुरुष कौन है, अधम पुरुष कौन है, तो मध्यम पुरुष है परमात्मा और अधम पुरुष है जीव। सो इन दैट वे द आइडिया इज कि व्हाट इज द रूट, क्या आप क्या कहना चाहते हो, कृष्णा क्लियर करो, किसके किस माध्यम से आप क्या कहना चाहते हो, दैट्स द क्वेश्चन अर्जुन इज आस्किंग। सो अभी दूसरा भी पढ़ लीजिए साथ में, तो 8 एक साथ आएंगे, फिर हम उसको एक एक करके बताते हैं। सेकंड,
યજ્ઞમાં સ્વામી પહોંચે અને તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે? વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્યો અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે છે?
હા, અભી કિતને ક્વેશ્ચન હુએ? આગે પાંચ થા, અભી ઇસમે કિતને? ઇસમે તીન.
સ્વામી કોણ હે, શરીર મેં કૈસે રહેતા હૈ ઓર ભક્તિ કે તરફ આપકો કૈસે જાના?
તીન. સો વી હેવ વી ગોટ ઇટ ક્લિયર, રાઈટ? કે આઠ પ્રશ્ન પૂછે અર્જુન ને દો શ્લોક કે માધ્યમ સે, જિસમે સે તીન ઓર ચાર, યે દો શ્લોક મે સાત પ્રશ્ન કે ઉત્તર દે દેતે, છ પ્રશ્ન કે ઉત્તર ભગવાન દે દેતે. દેટ ઇઝ એક એક શબ્દ હે, વન લાઈન આન્સર, વન વર્ડ આન્સર. ફિર બાદ મે ફિર ડિટેલિંગ કરતે આગે કે, ફિર બાકી કા પૂરા ચેપ્ટર ઉસ દો લાસ્ટ વાલે ક્વેશ્ચન કે આન્સર મે આતા હૈ. તો અર્જુન જો હૈ વો પ્રશ્ન પૂછે છે કે બ્રહ્મ કે વિષય મેં બતાવીએ, બ્રહ્મ આપ કહેતા હો ના બ્રહ્મ, તો આચાર્ય બતાવ્યા વિશ્વાચાર્ય ઠાકોર ને કે બ્રહ્મ જબ અર્જુન ને પૂછા તો ક્યા ઉસકા ઇન્ટેન્શન થા પૂછને કા, તો અર્જુન ને પૂછા કે આપ બ્રહ્મ કે લેકર કે ક્યા આપ જીવ કો કહે રહે હો યા પરમાત્મા કી બાત કર રહે હો? યુ સે જીવ ઓર પરમાત્મા, યે પ્રશ્ન હૈ. બ્રહ્મ કા અર્થ જીવ હૈ યા પરમાત્મા, યે પ્રશ્ન અર્જુન ને પૂછા. ક્વેશ્ચન મેં તો ઇતના હી કે બ્રહ્મ ક્યા હૈ, લેકિન વાસ્તવ મેં પ્રશ્ન એસા થા કે જબ આપ બ્રહ્મ કહેતે હો તો ઉસકે વો જીવ હૈ યા પરમાત્મા, અર્થાત વો મેં હું યા આપકા અંશ પરમાત્મા, કિસકો આપ બ્રહ્મ કહેતે હો? ફિર અધ્યાત્મ જબ આપકી બાત હુઈ થી અધ્યાત્મ કો લેકર કે, તો અધ્યાત્મ આપ આત્મા કો કહેતે હો યા ફિર મન બુદ્ધિ અહંકાર કો કહેતે હો? સૂક્ષ્મ શરીર કો અધ્યાત્મ આપ કિસે કહેતે હો? ભગવાન કો યે પૂછે, આત્મા યા ફિર મન બુદ્ધિ અહંકાર સૂક્ષ્મ શરીર, યે પૂછા અર્જુન ને. દૂસરા, ફિર જબ કર્મ કી બાત આઈ તો અર્જુન કહેને કા તાત્પર્ય યે થા કે સકામ કર્મ કી બાત કર રહે હો યા અકર્મ કી બાત કર રહે હો? આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ કી બાત કર રહે હો યા ભૌતિક પ્રવૃત્તિ કી બાત કર રહે હો? આધ્યાત્મિક કર્મ યા ભૌતિક કર્મ? અગર ભૌતિક કર્મ હૈ તો ફિર મેં ક્યું ફાઇટ કરું, યુદ્ધ ક્યું કરું? વાપિસ ઉસકે મન મેં તો થાય અભી ભી, યુદ્ધ ક્યું કરું? તો ભૌતિક કર્મ યા આધ્યાત્મિક કર્મ, યે પૂછના ચાહતે હૈ. તો અધિભૂત જબ પૂછા થા તો અધિભૂત આપ કિસે કહેતે હૈ પ્રભુ? ક્યા યે સારી સૃષ્ટિ કો અધિભૂત માના જાય? કિસકો અધિભૂત માને? યે પ્રશ્ન થા અર્જુન કા. ફિર અધિદૈવ, અભી અધિદૈવ સે આપકા તાત્પર્ય ક્યા હૈ? કિસી દેવ કોઈ કોઈ દેવતા કા નામ હૈ અધિદૈવ? કોઈ દેવતાઓ કે વિષય મેં કહે રહે હો યા વિરાટ રૂપ કે વિષય મેં કહે રહે હો? અધિદૈવ જબ અધિ યજ્ઞ કી બાત હુઈ તો અર્જુન યે પૂછના ચાહતે કે દેવતાઓ યજ્ઞ કા સ્વામી કોણ હૈ? દેવતા હૈ, કૃષ્ણ હૈ યા કોઈ તીસરા હી હૈ? અગર જો કોઈ ભી હૈ વો રહેતા કહાં પર હૈ? ઓર એસા જો અધિ યજ્ઞ હૈ જો સબકા સ્વામી હૈ ઉસકો હમ મૃત્યુ કે સમય પે કૈસે યાદ કર પાએ? ક્યોંકિ ભગવાન ને લાસ્ટ મેં બોલા થા ના કે એસા વ્યક્તિ ભી મુજે મૃત્યુ કે સમય પે યાદ કર સકતા હૈ, વો આઠ સાતમે અધ્યાય મેં થા ના, એસા લાસ્ટ દો શ્લોકો મેં, અંતિમ શ્લોક મેં, કે વો મેરે યજ્ઞ કો યાદ કરેગા, મુજે અધિ યજ્ઞ કે રૂપ મેં જાન કરકે વો મુક્તિ કો વો સફળ હોતા હૈ. તો અભી અર્જુન કે યે પ્રશ્ન ઇસ તરહ સે હૈ,
શરીર મેં ક્યું રહેતા હૈ? હાઉ ડઝ ઇટ રિમેન ઇન બોડી, મતલબ શરીર મેં કૈસે રહેતા હૈ? યજ્ઞ કા સ્વામી,
હા શરીર મેં કૈસે રહેતા હૈ? કોણ સે ધામ મેં રહેતા હૈ? વેર ડઝ હી રિસાઇડ, કહાં રહેતા હૈ વો? આઈડિયા વો હૈ કહાં રહેતા હૈ, મિસો ધામ મેં રહેતા હૈ, કહાં શરીર મેં રહેતા હૈ, દેટ આઈડિયા. તો યે અર્જુન કી ઇન્ક્વાયરી થી. મેં સોચતા હું કે તીન ઓર ચાર હમ લે લેતે, ફિર પાંચ સે, ક્યોંકિ એક એક શબ્દ કા આન્સર હૈ, પાંચ સે ફિર હમ નેક્સ્ટ ટાઈમ આગે કા પઢેંગે. તો તીન ઓર ચાર એક સાથ પઢ લીજીએ.
अविनाश भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट स्वरूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है अधिदैव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर या यज्ञ का स्वामी कहलाता है।
yes. तो यहाँ पर भगवान ने बता दिया, एक एक करके सबका आंसर दे दिया। भगवान ने कहा कि ब्रह्म जिसको बोलते हैं ब्रह्म, वो ब्रह्म और कोई नहीं है, जीव को ही ब्रह्म कहा गया है, लिविंग एंटिटी को। और एक होता है ब्रह्म और दूसरा होता है परम ब्रह्म, वो मैं हूं। इसलिए इसमें डिस्टर्ब नहीं हो रहा कि कौन भगवान या परमात्मा, ये नहीं। परमात्मा को ब्रह्म बोला जाता है और मुझे ब्रह्म आत्मा को ब्रह्म बोला जाता है। तो ये भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया और कोई नहीं। अध्यात्म को लेकर के भगवान ने कहा कि जीव का जो स्वभाव है अर्थात वो कृष्ण का दास है, वो उसका वास्तविक स्वरूप है। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो जाता है, प्रभुपाद यूज्ड टू से लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर। जैसे प्रभुपाद के तात्पर्य को अगर हम देखें, वो तात्पर्य इज वेरी नाइस, उसमें अगर वो एक लाइन है
भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है।
द कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन ऑफ द लिविंग एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम द पोजिशन, वही दो लाइन।
जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है, भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किन्तु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनावृत्ति में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है।
सेवा करना है, ये सबसे उत्तर। जब तक व्यक्ति भोग करने का स्वामी बनने का प्रयास करता रहता है वो स्वप्न की दुनिया में रहता है, वो सपनों की दुनिया में सोचता है। उसको सपने में कोई अच्छा लाभ देता है, कोई डरावनी चीज आ जाती है, तो सपने की दुनिया में सब देखता है, लेकिन वो वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन क्या है, उसका सेवा करना, भगवान की सेवा, तब जाके वो स्वस्थ होता है, वो स्थिर होता है, अन्यथा वो डिस्टर्ब रहता है। अभी कर्म को लेकर के भी प्रभुपाद ने लिखा है, पर कर्म को प्रभुपाद ने केवल कर्म के रूप में नहीं कहा है, भगवान भी बताते हैं कर्म का चक्र, उसको कर्म के रूप में माना जाता है। जर्नी, जीव की जीवात्मा की जर्नी को कर्म माना जाता है। इतने जन्म जन्म के कर्म जो भौतिक शरीर में धारण करने का के लिए बाध्य करता है उसको कर्म माना जाता है। फॉर प्रपस इज व्हेन द लिविंग एंटिटी इज इन मटेरियल कॉन्शियसनेस, पढ़िए, ही हैज टू टेक ऑन।
जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है।
यस, विविध सृष्टि कहलाता है जो भौतिक चेतना, दिस कॉल्ड कर्म। फिर
आगे वैदिक साहित्य, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ।
ओके, सो इस तरह से प्रभुपाद ने बताया कि कर्म का अर्थ केवल कर्म नहीं है, जीव का जर्नी। हम इतने अनादि कर्म से, अनादि कर्म, कहीं 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 जन्मों से जो कर्म कर रहे, वो कर्म जिससे हम भौतिक शरीर लेने के लिए बाध्य हुए हैं। हम भौतिक शरीर लेना पड़ता है क्योंकि कर्म हमारे वैसे, उसको कर्म कहा गया है। फिर अधिभूत के विषय में प्रभुपाद कहते हैं द फिजिकल नेचर, हाँ अधिभूत फिजिकल नेचर जो निरंतर बदलता रहता है प्रकृति। पढ़िए, तो फिजिकल नेचर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग।
यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है।
Yes, it is created at a certain point and will be annihilated at a certain point.
ये किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट।
और इसके स्वामी है केवल एक ही व्यक्ति, कृष्ण, ये एकमात्र उसका स्वामी है, उसका आधार बढ़िया चलता है। दिस इज कॉल्ड अधिभूत। और लास्ट में है, अभी दो है, अधिदैव है। अधिदैव क्या है, प्रभास इज द कंसेप्शन ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म।
परमेश्वर का विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित है अधिदैवत कहलाती है।
यस ये अधिदैव है। तो अधिदैव का अर्थ होता है कि जो विराट रूप है भगवान का, दैट इज अधिदैव। इसको डेमिगॉड्स के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अधिभूत हमने बता दिया आपको कि जो निरंतर चेंज होता है, जिसका स्वामी भगवान है, और ये परिवर्तित विश्व को कभी कोई रोक नहीं सकता, कोई बड़े बड़े वैज्ञानिक भी रोक नहीं सकते कितना भी प्रयास करे। और हम हमेशा सब कुछ शाश्वत चाहते हैं, क्योंकि हम शाश्वत है, हम सच्चिदानंद, हम स्वाद सुख चाहिए वो भी शाश्वत चाहिए, हमें खाने का स्वाद वो भी शाश्वत, सब कुछ शाश्वत चाहिए, अनएंडिंग, नॉन स्टॉप, एंडलेस, ऐसा चाहिए, वो हो नहीं सकता। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें शाश्वत वस्तु दे रहे प्रेम के रूप में, वो आपको प्रेम प्राप्त हो रहा है। इसलिए चैतन्य चरित अमृत, अमृत का अर्थ है जिसको मृत्यु नहीं होता, कृष्ण भावना अमृत, जिसका मृत्यु नहीं होता, इसलिए वो शाश्वत वस्तु है। और अधिदैव को लेकर के भगवान ने कहा कि वो विराट रूप जो है वही अधिदैव है। इसलिए जितने इस सबके अंतिम स्वामी भगवान, इसे किसी देवताओं को अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबके मूल जो है वो विराट रूप है। और विशेष करके विराट रूप जो है भगवान का, वो भौतिकवादी लोगों के लिए है, भक्तों के लिए नहीं है। वो आएगा 11 चैप्टर में। और अंत में अधि यज्ञ, उसके विषय में प्रभुपाद कहते हैं, प्रेजेंट इन द बॉडी अलॉन्ग विद द इंडिविजुअल सोल इज द सुपर सोल। वन लाइन,
प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है, यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है।
बता दिया रहने का जगह भी कहाँ पर रहता है। परमात्मा है, अधियज्ञ है और हृदय में निवास करता है। तो ये सब मिला करके अर्जुन के जो प्रश्न थे, ये इतने सबको जानने के बाद किस तरह से कोई व्यक्ति भगवान का चिंतन कर सकता है, दैट वॉज द इंक्वायरी मेड बाय अर्जुन। सो नेक्स्ट वी विल टॉक फर्दर ऑन अंतकाल से लेकर के जितना भी आगे कौर हो पाएगा। स्टॉप।